अभी जिंदगी हमर बहुत संघर्ष से ही कट रहा बा। अब यहाँ तक का कहल जाओ कि परिवार के पारिवारिक बाल बच्चा के जीवन दैनिक धाय के स्थिति, शिक्षा दीक्षा के स्थिति, बहुत कष्टकर जीवन से हम अभी बिता रहा बनी अपन जिंदगी, पारिवारिक जिंदगी।
को भाई बहन लो?
हम अकेले बनी।
अच्छा, को गो संतान बा?
परिवार एगो बा, एगो हम बनी, छ गो बचिया बा, एगो बच्चा बा।
जी तरह अपने के छोटा बातचीत हमनी के परसा निचुटा के निवासी बालेश्वर चौधरी जी से कइल।
जरूर कार्यक्रम लेके आ चुकल बानी सन हमनी के पैसा आ जिंदगी। हम बानी कार्यक्रम प्रस्तोता बिमला गुप्ता,
हम बानी राधेश्याम पटेल। अपने के कार्यक्रम हरेक शुक्रवार के सवेरे 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक आवेला, आ ओकरे फिर हमनी के पुनः प्रसारण मंगलवार के अपने के 9:15 बजे से लेके 9:45 बजे तक ले रात के बजेला
नारायणी एफएम 103.8 MHz पर। जरूरी कार्यक्रम में हमने के घर आईसी जौन भी अवस्था सब बाटे, आर्थिक अवस्था सब एक बारे में हमने के बातचीत करनी सन। यह संबंधी हमने के एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ल कथा लेके आवेनी सन और विज्ञ के भी बुलावेनी सन कि उनकर जिंदगी में जौन समस्या बाटे उ के तरह समाधान हो सकत बाटे, और साथ साथ ही हमने सभी के परिवार में जे भी आर्थिक अवस्था सब हमने के बाटे चल रहल बाटे एकरा के तरह हमने के समाधान कर सकत बानी सन, के तरह वाला भविष्य के हमनी बढ़िया कर सकत बानी सन, कह के उहा के अपन राय सलाह देबेनी।
जी आज के ई कार्यक्रम में हमनी के अब ज्यादा बकबक ना करम सन, काहे से त उहा से हमनी के बातचीत जोन कइले बानी सन, बहुत लंबा बातचीत कइले बानी सन, तो ओसे हमनी के चाहम सन कि जे उहा के कथा सुनी कि जे उ आदमी केतना दुख झेल लेबा, यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन से केतना उहा के मतलब दमन शोषण भइल बा। ई परसा जिला ही ना, 2 नंबर प्रदेश में ही मुद्दा मुकदमा आ कोर्ट कचहरी के जौन मामला बा, कुछ आदमी ऐसे ही अपन पेट पाल रहल बा, झूठा मुद्दा में अपने के फंसा के लाखों लाख हड़पे वाला काम भइल बा। ओकर एकदम प्रतिनिधि उदाहरणीय पात्र बानी निचुटा के बालेश्वर चौधरी जी, सुनी वहाँ से कइल बातचीत।
नमस्कार, अपन नाम बताए।
हमारे नाम बालेश्वर प्रसाद चौधरी परी।
घर
साबिक गावी से निष्ठा वार्ड नंबर 5, हाल के गाँव पालिका पटरो सुगोली वार्ड नंबर 5, अभी अस्थायी घर बीरगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 13 राधे माई।
उम्र कितना हो?
हमारे उम्र 47 वर्ष।
जी आज हमनी के बात कर रहा बानी बीरगंज 13 राधे माई आ पटेरवा सुगोली 5 निष्ठा टोल के निवासी बानी बालेश्वर चौधरी जी। यहाँ के बहुत लंबा समय से लगभग 1 दशक से मुद्दा मामला के झंझट में फंसल एक पीड़ित बानी। यहाँ के आरोप बा कि गांव के ही अगुआ लोग हमरा के उखी बिखी लगा दलक, घर परिवार बर्बाद कर दलक, जगह जमीन आ संपत्ति भी तकले मुद्दा मुकदमा के चक्कर में लगा के हमर जीवन में बहुत बड़का एगो नकारात्मक प्रभाव पड़ने लो। तो यहाँ से बीरगंज में आयल क्रम में भेंटघाट भइल बा, तो उसे हमनी के यहाँ से बातचीत कर रहा बानी सन। अभी जिंदगी कैसे कट रहा बा?
अभी जिंदगी हमर बहुत संघर्ष से ही कट रहा बा। अब यहाँ तक का कहल जाओ कि परिवार के पारिवारिक बाल बच्चा के जीवन दैनिक धाय के स्थिति, शिक्षा दीक्षा के स्थिति, बहुत कष्टकर जीवन से हम अभी बिता रहा बनी अपन जिंदगी, पारिवारिक जिंदगी।
को भाई बहन लो?
हम अकेले बनी।
अच्छा, को गो संतान बा?
परिवार एगो बा, एगो हम बनी, 6 गो बचिया बा, एगो बच्चा बा।
7 गो बच्चा में से एगो लड़का, 6 गो लड़की। अच्छा, ओकरा बाद अपने के ए जम बीरगंज रह जाला
की? पूरा बसाई अभी पहले तो परिवार रहत रही घर है, लेकिन एगो ऐसा अभियोग लागल बा जेकरा लेके हमरा परिवार के लेके भी अब साल भर समथिंग से हम बीरगंज में बानी, लगभग आषाढ़ सावन से
बीरगंज में बानी। घरे बा यहाँ की डेरा लेकर?
बीरगंज में एगो छोटछीन अपन जमीन बा, छोटछीन एगो रहे खातिर एगो टाली के घर बना के हम अपन परिवार पूरा लेके जन बनी अपने घर बा।
ओकरा बाद अपने के पहले के अपने के कितना जगह रहे, अभी कितना जगह बा, आ पहले का काम करते रहे, अभी का काम करते?
हमर शुरू के एगो कृषक बानी, कृषक के बेटा बानी, खेती शुरू में करते रह।
कितना खेत बा?
खेत हमर समथिंग 7 बीघा चांचुने। हमर पुरखौली पेशा खेती है। 2056 साल में एगो लेखा पढ़ी कानूनी व्यवसायी के एगो प्रमाण लेके अधिकार लेके जिला अदालत से मालपुत में काम भी करते रहनी। आज अपने के 1 दशक यानी कि 10 बरस से हम वो मालपुत लमसम छोड़ के पूरा रूपे में छोड़ के अभी एगो संस्था चलाओ तनी, आ प्लस गरीब गुरबा सहाय कमजोर के जेकरा पीड़ित व्यक्ति बा ओकरा शादी ब्याह में दवा दारू इलाज में मरण हरण में जो सहयोग करे पड़ता अपने से कहीं से सहयोग लेके भी हम सहयोग करतनी आ प्लस एगो सामाजिक क्षेत्र में एगो हम अभी पूरा पूर्ण रूप से ही समाज सेवा में हम लागल बनी अभी
कौन सहकारी संस्था
सहकारी संस्था का नाम हो प्रगति कृषि सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी
कब कितना साल से
ये अपने के स्थापित 2056-65 साल में स्थापित बा
कितना बा पूंजी एकर
पूंजी एकर वो बरात तो दर्ता में हमनी के संस्था के संस्थागत पूंजी हमनी के 2800 रुपया अभी एकर कारोबार अपने के समथिंग 45 लाख के हरहरी में अभी हम चला रहल बनी
कितना आदमी जुड़ल बा इससे
अभी इससे जुड़ल तो हमनी के समथिंग अभी
निक्षेप करता
निक्षेप करता अभी 200 कुछ समथिंग बा
250
के हेर फेर में
अच्छा उस संस्था का अपने कथी बनी
हम अध्यक्ष बनी
अध्यक्ष बनी खेतवा कहत रहने की 7 बीघा खेत रहे पहले अभी कितना बा
अभी खेत तो हमर मान के चली तो अपने के और सब धाराई जोन बाउ सब मिला के लेके चलल जाए तो 2 बीघा
5 बीघा
5 बीघा ही हमर
चल गेल
परसा जिला के खास कर के निचुटा के और पटवर सुगोली गांव पालिका के अगल बगल के कुछ भू माफिया कहल जाए चाहे राजनीति दलाल कहल जाए चाहे ओकरा के समाज के शोषक दमन गुंडा के कहल जाए उ लोग के चलते हमर संपत्ति कुछ हेना में ना बा लेकिन ओकरा के हम अपना जिंदगी में जे जवना अवस्था से संघर्ष करे के पड़े उ अवस्था से हम संघर्ष क के आ हम ओकरा के लौटेबे करें चाहे एकरा खातिर हमरा दुनिया से कुछ करे के भी पड़े समय में कुछ करे के भी पड़े तो फिर भी हम पीछा हटे वाला नहीं की
अच्छा एक बात बताए कि जे अपने के बच्चा अभी पढ़ रहा बा
हमर बच्चा अभी पढ़ रहा
शादी ब्याह वाला भइल बा
शादी एगो के कइले बानी बचिया के
जेठ बाबी के शादी हो गया अच्छा अपने के जिंदगी में निराशा भइल मतलब अपने के जिंदगी में मोड़ कहाँ से आयल मोड़ पर से जहाँ से अपने के मतलब घर परिवार में तनाव कलह ओकरा बाद संपत्ति अपने के निकले लागल बर्बाद होके लागल घटना का भइल वहाँ से हमने के संक्षेप में बताए
ई घटना खास करके हम 2056 साल में जो लेखा पढ़ी का लाइसेंस लेनी उ लाइसेंस से 3 साल पहले से हम लाइसेंस लेवे के प्रयास में रहनी एगो किसान के लड़का भैया चल जाए कि आमदनी के स्रोत 2 पैसा साइड से कुछ होगी तो हमनी के कुछ आधार हुई बाल बच्चा के पढ़ावे खातिर तो 2056 साल में हम लाइसेंस लेनी लाइसेंस लेला के बाद में जब हम समाज में कुछ काम करे लगनी तो गरीब गुरबा को ऐसा काम करे तो हमर पहले से भी संस्कार पारिवारिक सामाजिक दृष्टि भैया के चलते सामाजिक एगो सोच भैया के चलते गार्जियन भी वही तरह के भैया के चलते हम विशेष करके गरीब प्रति हम बेसी चासू रखनी गरीब लोग के काम हम एकदम सहयोग में निस्वार्थ भावना से कोनो एक पैसा ना खा के हम करत ऐनी जौन के कारण समाज में कुछ व्यक्ति के इस चीज अच्छा ना लागत जेकरा चलते विशेष करके हमर लफड़ा अपने के 2068 साल से विशेष रूप में उग्र रूप में आवे लागल जेकरा चलते हमरा के चोरी अभियोग में भी संस्था के लेटर पैड जाली चलानी नंबर जाली छाप जाली सिग्नेचर जाली सब कुछ कह के 1 साल अपने के मल के जो अभाव भई रहे वो मल के खाद चोरवा दिलक लोग सामग्री से और वो अभियोग लगा के गांव से प्रशासन बोला के पुलिस बोला के लियान के बीर डेरा बता के पकड़वा के भीतर करैलक लोग फिर भी हम भीतर ना गईनी लास्ट में अपना अपना अब पावर लगा के राजनीति पावर होके चाहे अपन जमुना पावर होके वो लगा के डायरेक्ट CDO के आदेश में हम थुना में गईनी आओ थुना में गईनी तो 7 कट्ठा जमीन हमरा धरौटी ध के छूटल बानी
कितना पैसा
ओवरा तो बीगो 40,000 बीगो में हम 7 कट्ठा धरौटी जमीन जखनी वो धरौटी जमीन राख के हम अभी छूटल बानी अभी वो जमीन वही तरह से धरौटी बा जेकरा खातिर हम
तारीख पर जाए के पड़ला
तारीख पर अभी नहीं जाए के पड़ला ओवरा का बोलला कि तारीख
सब छीनो फानो भइल बा
अभी छीनो फानो नहीं भइल आ हम ओवरा तारीख में जात रहनी तारीख में जब जात रहनी तो बराबर फाट वाला का कोई लगे झुकिया के तारीख तुरवा के प्रयास कैलक कि जाए रउआ के कुछ ना हो लेकिन हम भी थोड़ बहुत कानून जानला के चलते हम उ चीज़ बुझनी कि हमरा के झुकिया होता हम एगो साइड से साधारण निवेदन दे देनी आ निवेदन दे के दर्ता करा के हम दर्ता नंबर लेके घरे अनी अगला तारीख जब पड़ल हमारा तो अगला तारीख में जाता नहीं तो फाट वाला फिर कहता कि कहाँ आयल बने हम को नहीं जे रउआ के तारीख बाज आयल बनी तारीख में तो कहता रउआ तो तारीख तुर दल बने तारीख नहीं कि तुर ले रउआ अपन फाइल उल्टाई तो बोल तारीख तुर दल बने फाइल उल्टाई जरा चलते फाट वाला से विवाद भइल फाइल उल्टैलक तो वही पर ऊपर निवेदन रहे हमको आई निवेदन कहाँ से आ गई बा ओकरा से बहस भइल बहस भइला के बाद में अपने के एगो ईमानदार सकुशल
अदालत में
जी ना CDO ऑफिस में
CDO ऑफिस
जी तो सकुशल प्रशासन जे आयल अपने के SP रमेश खरेल ओकरा पाला में लागू औषध उन्मूलन के कार्यक्रम रखलक हमारा निष्ठा गाविश में खुला एकदम जनता के बीच पट में सीडीओ तारानाथ गौतम भी गई, डोटल एलडीओ साहब भी गई, अपने के एसपी रमेश खरेल जी भी गई ने, वहाँ खुला जनता के बीच पट में हम दो शब्द मंगनी, हमरा के ना मिलत रहे बोले के, लेकिन हम जबरदस्ती कैनी, लास्ट में जाके दो शब्द मात्र मिलल हमरा दो मिनट खातिर। तो हम सोचनी कि जे दो मिनट देता तो मंच पर खड़ा हो जाए, तो हमरा के हाथ धो के हटाई तब न हटम, हम दुए मिनट स्वीकार के हम मंच पर खड़ा बहनी, अपन परिचय देनी, अपन पीड़ा रखनी, आ यहाँ तक ले कि हम वो बीच पट में एसपी रमेश खरेल के भी हम कहनी, अपन पीड़ा से कहनी कि हमरा तीन पुस्ता में रउआ पता लगाई, कहीं चोरी डकैती गुंडागर्दी अपहरण तस्करी खून तो यही मन से रउआ हथकड़ी लगाई, आ ना तो कौना मुदा में हम भीतर गईनी अनुसंधान होके के पड़ यदि रउआ सकुशल प्रशासन बनी तो हम इंसाफ करी, सी डी ओ साहब इंसाफ करस, आ यदि एक तरह से दादागिरी ही करे के बा तो बिहान हमू 12 बजे दिन के दादागिरी करें, लेकिन एसपी साहब सी डी ओ साहब हमारा हाथ में हथकड़ी लगावे के ना
पड़े।
ओकरा बाद में वहाँ शोभन बहुत कुछ चीज के गहन रूप से देखनी, एसपी रमेश खरेल बहुत अपन काबल के अनुसंधान कैनी, उ चीज हमारा थाह ना रहे, लेकिन वहाँ के अनेक किस्म के अनुसंधान कैनी, राते के फोन करते रहनी, कभी सवेरे बुलाई वहाँ के अपना टेबल पर चाय पिए खातिर, लेकिन हमरा ये मालूम ना रहे कि वहाँ के अनुसंधान करते नहीं। लास्ट में जाके जौना संस्था के चोरी अभियोग में हम गए रहनी भीतर, वही संस्था के वार्षिक साधारण सभा में हम उनका के प्रमुख अतिथि बना के बोलनी, आ हमहूँ मंच लगैनी दखिन भने कि क्रिया हमहूँ अकेले ना खाएम, क्रिया रहू से खिया, एगो स्कूल के सरस्वती माता के मंदिर के लगे हम मंच लगैनी दखिन भने, आ मंच में अपन पूरा आय व्यय उनका हाथ में थमा देनी कि एक विषय में जहाँ से जो जौन पूछे को हुई हमारे से पूछ लें, काहे तो हम एगो अभियोग लागल व्यक्ति बनी, अध्यक्ष बनी, लेकिन उ चीज हम सोचले ना रही जौन वहाँ के अनुसंधान के बावजूद में वहाँ के जौन बुझनी उ चीज हमरा के देनी कि मंच पर वहाँ के अपना मुँह से स्वीकरनी कि काल निष्ठा में जौन हमार कार्यक्रम रहे, वो मंच में जौन हम बालेश्वर जी के हम विचार सुनले रहनी, तो हमरा ऐसा लागल रहे कि बालेश्वर जी गलत बा कि जरा इनकरा ऊपर इतना दबाव बा, इतना इनकरा ऊपर दमन होता, लेकिन इनकरा मालूम नहीं है, हम कहले भी नहीं कि यहाँ के हम गहन अनुसंधान कैले बनी, अनुसंधान के क्रम में हम कोनो कसर नहीं छोड़ले, लेकिन जहाँ भी एक एगो चीज़ मिलल कि आदमी ईमानदार बा, समाज के कुछ देवे के चाहता, जरा चलते यहाँ के पीड़ा भोग रहल बन जोन आज हम अपना आँख के सामने देखनी।
तो मुद्दा रफा दफा हो गल बा,
मुद्दा अभी यथावत बा,
यथावत
बा, सी डी ओ साहब वहाँ कहनी निष्ठा में कार्यक्रम,
जगह अभी धरौटी में,
जगह अभी धरौटी में बा,
कब कैसे ओकर निकले के तरीका,
ओकरा निकले के तरीका अब सी डी ओ के मुद्दा कमना ही सबसे छीनो फानो हुई, ओकरा विषय में हमरा तारीख भी नहीं मिलत, हम जेबो भी ना करने, ओकरा मुद्दा के विषय में हम कुछ पूछबो भी ना करने, हम एगो धरोहर के रूप में रखले बनी, शंभु कोइराला
खंजोत कर रहल बानी,
जगह तो खंजोत करता नहीं, शंभु कोइराला स्टूडियो साहब बनी, वहाँ के एगो फोनिंग कार्यक्रम नारायणी एफएम में रहे, हमरा आवाज आयल, हम सुननी, हम फोन से भी उनकरा के भी चीज का हम रखनी, वहाँ के बोलनी कि आई रहुआ स्टूडियो में, हम मुद्दा के छीनो फानो कर देम, लेकिन हम वहाँ गईनी आ स्टूडियो साहब से कहनी कि स्टूडियो साहब एगो एकरा के अमानत के रूप में रख कि बिहान के दिन में ई चीज प्रमाणित कह के हम देखाई कि बालेश्वर चौधरी एगो चोर ना हो, एगो भ्रष्ट ना हो, दलाल ना हो, कोनो गरीब गुरबा के शोषण ना करला, बल्कि गरीब गुरबा के पक्ष में ला के लड़े।
तो अपने के पीछे लागल,
हमारा पीछे विशेष कह के ओ गाँव के अगुआ लोग बा, जैसे दिनेश चौधरी, विश्वनाथ साह तेली जो उनकी मर गई वहाँ के, वहाँ के और उपाध्यक्ष बानी असमुद्दीन देवान, और लोग संस्था के एगोरी बा सहकारी संस्था ओकर जुड़ल अध्यक्ष अपने के रहनी हो वहाँ के विश्वनाथ साह, अभी वहाँ के का बोला कि एगो प्रबंधक के रूप में राम नारायण महतो लगाए, तो अभी बहुत आदमी बा, एगो पूरा एगो संजालय बा, एगो टीमे बा,
ठीक बात, ठीक बात। एक आदमी मान लीजिए बेईमान हुई चाहे झूठ बोल दल हुई, वो हिसाब से हुई अपने पर आरोप लगावे में चाहे कोनो ऐसा बात में फंसा में सारा आदमी अपने के नजर में एंगल था,
कारण एक गो बा उ लोग के कि हम कहीं गरीब गुरबा के सेवा करे जाइने तो एक रुपया के हम नाश्ता भी ना करें, एक कप चाय ना पीने, एक रुपया के पेट्रोल ना कसाइने, एक खिली पान तो हम कहियो जिंदगी में कसैली पान घुटका ये सब तो हम खैला ही नहीं की, अभी तक खैला ही नहीं की, तो उ लोग के कहीं इस चीज अब दिमाग में का लागता, लेकिन हमारा अपना बुझाई में कि बिहान के दिन में कहीं या समाज में कहीं आगे बढ़ी, चुनाव लड़ी, कुछ करी कि बिहान हमने परास्त करी कि
जैसा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा,
हालांकि हम पहले के कांग्रेस के ही सपोर्टर व्यक्ति हैं,
अच्छा ओकरा बात छोड़ी, अब राजनीतिक बात छोड़ी, अपने के ऊपर अभी मुद्दा कौन कौन मुद्दा बा, आई मुद्दा लंबे के कारण का बा, अगर बता।
अभी हमारा ऊपर विशेष करके देखें तो वही संस्था के माध्यम से फिर दोबारा अपने के आज के 3 साल पहले
छोटकर
4 साल पहले अपने के 70 साल में ना खाइल पैसा वहाँ के अगुआ शिव चौधरी की जो लेन देन के मुद्दा में हमर 7 बीघा में अपने के 4 बीघा जमीन वो में फंसा दिलक लो।
कितना पैसा लेन देन को?
15 लाख जमा
कागज उगज
15 लाख रुपया मध्य रातों रात पैसा हमारा तिरे के पड़ी।
यदि पैसा अपने ले ले रहनी
जिना उस संस्था में कोई के ऋण के जरूरत रहे ओकरा के ऋण हम बैंक से दिवा दिल रहनी।
अच्छा
आ उ ऋण में दे 1 लाख रुपया उ ले ले रहे ओकरा से सब बातें वहीं से बेरका दे व्यक्तिगत नहीं है उ सामाजिक बा समाज ओकर बा ओकर का संचालक समिति बा सब के निर्णय से भई रहे लेकिन उ पैसा 1 लाख हमरा के रातों रात हमरा से अकेले तिरवावल गई जबरदस्ती
ना तिरम तो
हमरा ऊपर का वाला दुर्व्यवहार हो बिहान तो हम अपन प्रतिष्ठा बचावे खातिर
पैसा जो आदमी ऋण ले रहे पैसा दल
पैसा ओकर खाइल पैसा हम ही तिरनी बाद में जाके ओकरा से अपन ओकर जमीन फोकुआ करा के तो बाद में जाके हम ओकर फोकुआ कोई नहीं ओकर जमीन का वाला हिसाब किताब हम बाद में कोई नहीं पहले तो हम अपन तिर देनी
लेकिन ओकरा से पैसा लेने
बाद में
ले वो एगो मतलब
डर त्रास देखावल गई।
अच्छा तो वो हिसाब से अच्छा एक बात बताएं कि जो गांव घर में मुद्दा मुकदमा चाहे दलाल लोग जो फंसावेला झगड़ा विवाद बढ़ावेला ये परसा जिला में कितना भाई?
परसा जिला में
तो अपने के निष्ठा
हमारे एगो निष्ठा के हम एगो परसा जिला में देखा था नहीं अभी के स्थिति में तो 75% आदमी इस तरह के बा
जो उनकी झगड़ा विवाद लगा के दो पैसा कमाता
उस सरसरी रूप में यदि एकरा के देखल जाए
पुलिसों में बात सीडीओ करा ले
हर एक जगह हम देख रहल बानी हम यहाँ तक ले कि सब अपने के न्यायिक जो कार्यालय बा वहाँ तक ले के हम अनुभव कर चुकल बानी आँख से देख चुकल बानी एक दू गो मुद्दा में हम परसा जिला अदालत के भी हम उस चीज़ देख ले बानी अपना से देख ले बानी विवाद होके भी भइल बा मुद्दा छीनो फानो ओ तरह के यदि न्याय प्रशासन भी हो जाता तो आम जनता गरीब गुरबा के न्याय कहाँ मिली के दी अभी देखल जाए सुन तस्करी वाला में 33 किलो सुन में हमनिक रात दिन पत्रिका में पढ़ता न्यूज में आवता कि DIG IGP तक ले बा साधारण प्रहरी जवान से लेके तो साधारण प्रहरी जवान से DIG तक लेके यदि बा तो आम जनता के सुरक्षा के दी केकरा पर आम जनता विश्वास करी कहाँ जाइए आम जनता जे पीड़ित बा वो अपन पीड़ा के सहयोग लेवे खातिर जहाँ जाता वही जन भ्रष्ट बा तो ओकर सुरक्षा के दी।
बातचीत खातिर समय देनी नारायणी FM के कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद
हमरो तरफ से धन्यवाद बा रउआ के आ संपूर्ण नारायणी FM परिवार के हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा कि रउआ भी हमरा ऐसा एगो पीड़ित आदमी के आज बोला के रउआ FM में एगो हमरा के अपन पीड़ा राखे के जो मौका देनी एकरा खातिर हम अपना तरफ से अपना संस्था के तरफ से अपना पूर्ण परिवार ऐसा गरीब गुरबा सहाय कमजोर के तरफ से हम रउआ लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के
जरूर ई जोन कथा सुनी हा बालेश्वर चौधरी जी के जिंदगी से जुड़ल ई कथा रलकटे कुछ बनावटी ना एकदम जे भी रलकटे एकदम सच्चाई के साथ रलकटे बहुत ही समस्या वहाँ के झेल रहल बानी जौन भी मुद्दा मामला के बात करनी है स्थानीय जे भी प्रशासन से वहाँ के जे भी समस्या भोगे के पड़ल साथ साथ वहाँ के पहले बहुत ही सम्पन्न परिवार के रहनी अभी बहुत ही संघर्ष के साथ वहाँ के अपन जीवन बितावे के पड़ रहा बाटे सुन के बहुत ही दुख लागल
जी आई तब हमनी के अब समय भइल बा विशेषज्ञ के बुलावे के जानकार व्यक्तित्व के तो हमनी से वहाँ बातचीत कैले बानी सन सुनल जाओ वही बातचीत। आजको कार्यक्रम पैसा र जिन्दगीमा हामीसँग हुनुहुन्छ वीरगंजका अधिवक्ता रामेश्वर सेडाईजी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ तपाईँले
धन्यवाद राजेशजी
जसरी हामीले स्टोरी सुन्यौँ पर्सा निचुटाका बालेश्वर चौधरीजीको तपाईँको विचारमा के लाग्छ के भएको रहेछ
वास्तवमा अब उहाँको रेडियोमा रेकर्ड भएको उहाँको आफ्ना भनाइहरू सुन्दाखेरि समाजमा उहाँले केही गर्न खोज्नुभएको छ केही नयाँ परिवर्तनका लागि उहाँ प्रयत्नशील हुनुहुन्छ र त्यो उहाँको प्रयत्नलाई चाहिँ समाजले त्यति सहज रूपले समाजका पनि खास गरेर केही वर्गले केही अग्रभागमा रहेका समाजलाई चाहिँ नेतृत्व गर्छु भनेर हिँडेकाहरूले चाहिँ उहाँलाई असहयोग गरेको उहाँको अभियानलाई चाहिँ आँचाउने किसिमले विभिन्न गतिविधिहरू गरेको र राजनीतिक रूपले यो मान्छेले चाहिँ भोलि कुनै नेतृत्वदायी भूमिकामा जान सक्छ भन्ने आशंकाले चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रगतिको बाटोलाई चाहिँ अलिकति अवरोध गर्न खोजेको हो कि भन्ने जस्तो उहाँको भनाइबाट उहाँको चाहिँ जुन उहाँले स्टोरी भन्नुभयो त्यो स्टोरीबाट त्यो कुरो बुझिन्छ र त्यसैको उपजको रूपमा चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ आरोपित गरियो सहकारीको चाहिँ मार्फत चाहिँ वितरण भएको मल चोरीसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ अभियोग पनि लगाइयो र त्यो अभियोगमा चाहिँ मैले अहिले पनि मेरो मूल्यवान सम्पत्ति चाहिँ धितोको रूपमा राखिराखेको छु मुद्दा अहिले पनि चलिराखेको छ म त्यसबाट चाहिँ बाहिर निस्कने त्यसबाट चाहिँ आफूलाई निर्दोष सिद्ध गर्ने प्रयत्नमा म लागिराखेको छु भन्ने मोटामोटी उहाँको भनाइबाट त्यो देखिन्छ र यसले एउटा समाजको कस्तो अवस्था छ त भन्ने कुराको चित्रण चाहिँ त्यसले गर्छ एउटा प्रतिदि घटना हो कि यस्ता घटनाहरू उहाँको हकमा त यो प्रकृतिको छ भने तर योभन्दा पनि एकदम गहन प्रकृतिका पीडाहरू भएका मानिसहरू समाजमा पाइन्छन् त्यस्ता पीडा बोकेका मानिसहरू अनन्त उदाहरणहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ त यसले हामीलाई के देखाउँछ त भन्दा समाजको परिवर्तन गर्ने जुन एउटा अभियान छ त्यो त्यति सहज छैन त्यो त्यति सरल छैन त्यो असाध्यै कठिन बाटोबाट चाहिँ गुज्रनुपर्छ र हाम्रो समाजको जुन चेतनाको स्तर छ शैक्षिक स्तर छ जुन पछोटेपन छ ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ समाजलाई अलिकति जुन गतिमा हामीले समाजको चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यो परिवर्तन गर्न हामी सफल भइराखेका छैनौँ किन भन्दाखेरि अलिकति समाजमा नयाँ कुराहरू केही स्थापित गर्नका लागि सकारात्मक परिवर्तन गर्नको लागि जसले एउटा चाहिँ रचनात्मक भूमिका खेल्छ ती मानिस समाजले सबैले एकनाथले चाहिँ सहयोग गर्दा रहेनछन् भन्ने कुरो यसबाट पनि देखिन्छ
रामेश्वरजी म फेरि आउँछु सबभन्दा पहिला यो कानुन भन्ने चिज कस्तो हुन्छ के हो यो
वास्तवमा कानुन भनेको मानवले मानवका लागि बनाएको र समाजलाई व्यवस्थित गर्न होइन मानवीय क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित गर्न नियन्त्रित गर्न र कुन कार्य गर्नुहुन्छ कुन कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा चाहिँ सीमारेखा छुट्याउन बनाइने सामान्य एउटा चाहिँ नियम हो हिजो त्यति कुनै समयमा धर्मले त्यसलाई निर्देशित गर्थ्यो होला धर्ममा लेखेका कुराहरूलाई हामी कानुन भन्थ्यौँ होला भने पछि गएर समाज विकासको क्रममा चाहिँ कानुन चाहिँ लिखित रूपमा आउन थाल्यो संहिता बद्ध हुन थाल्यो र कानुन अहिले हामीले संसारभरि कानुनका जुन किसिमको एउटा परिभाषित रूप पाउँछौँ त्यो परिभाषित रूपले चाहिँ आफ्नो समाजको देशको आवश्यकता सापेक्ष कानुनहरू बन्दै गइरहेका छन् त्यो कानुनको अवलम्बन र त्यसको अभ्यास र त्यसको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ प्राप्त हुने उपलब्धि समाजको स्तर अनुसार देशको सभ्यता र देशको चाहिँ कति ऊ कुन स्तरमा छ कति माथिल्लो स्तरमा छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग र पालना पनि भइराखेका छ हामी कहाँ पनि कानुनको प्रयोग र पालना चाहिँ भइराखेकै छ तर अब कानुनको कसरी प्रयोग भयो कस्ता व्यक्तिले कानुनको कसरी पालना गराए होइन कानुन कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरू कति सक्षम छन् कति निष्पक्ष छन् कति प्रभावकारी छन् र कानुन आफै कति उचित कानुन छ अथवा कानुन आफै कति चाहिँ न्यायोचित छ भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ यो प्रश्नहरू पनि उठ्छन् कहिलेकाहीँ कानुनले नै समाजलाई बोकेर हिँड्न नसकेका त्यस्ता कानुनहरू पनि हामी कहाँ अहिले पनि हुन सक्छन् ती कुराहरू भनेको पुनरावलोकनको कुरामा हामीले पुनरावलोकन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ समीक्षा गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि हामी कहाँ रहेका कानुनका कमी कमजोरीले चाहिँ कस्ता समस्याहरू उत्पन्न गरेका छन् र त्यसमा चाहिँ कस्तो समसामयिक सुधारको आवश्यकता छ अहिलेको समाज सुहाउँदो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा जोडिएकै हुन्छन्
जस्तै यो बालेश्वरजीको एउटा घटनालाई हामी लिँदाखेरि भनिन्छ कि कानुन अन्धो हुन्छ इभिडेन्स खोज्छ प्रमाण छैन भने तपाईँले जितेको मुद्दा पनि हार्नुहुन्छ यो केसमा यदि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ र आफूलाई मतलब म सही थिएँ भनेर सिद्ध गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ तर प्रमाण जुन छ विपक्षीसँग छ त्यो कन्डिसनमा के पाउनुहुन्छ र त्यो कन्डिसनमा तपाईँको न्यायकर्ता अथवा न्यायमूर्ति न्यायाधीशहरूको के हुन्छ तजबिज खालि कागज मात्र हेर्ने गरिन्छ कि तपाईँको मुद्दा र प्रकृति र उसको भावना पनि समेटिन्छ इजलास चल्दाखेरिको बखतमा के हुन्छ त्यो बारेमा अलिकति
होइन यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँको बालेश्वरजीको आफ्नो भनाइ छ र बालेश्वरजीलाई आरोप लगाउनेहरूको अथवा जुन आरोप बालेश्वरजीमाथि लाग्यो त्यो केमा आधारित छ त्यो आफै तथ्यमा आधारित छ कि छैन प्रमाणमा आधारित छ कि छैन त्यो प्रतिशोधमा आधारित हो अथवा बालेश्वरजीले उहाँमाथि लागेको आरोपित जुन कसुर छ त्यो कसुर वास्तवमा उहाँबाट भएकै हो भन्ने कुरा चाहिँ अब अर्को तेस्रो न्यायकर्ताले हेर्ने चाहिँ आधार के हो त न्यायकर्ता चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने आधार के हो त भन्दा त्यो मिसिल कसरी तयार भएर आयो जसले आरोप लगायो त्यो आरोपमा आधारित भएर अनुसन्धान गर्नेले के अनुसन्धान गर्यो, को कति उसले निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्यो, कति तथ्य र प्रमाणहरू उसले सङ्कलन गर्यो र मिसिलले के भन्छ, अब व्यक्तिका आफ्ना चाहिँ निजी भनाइहरू, निजी चाहिँ भावनाहरू अथवा त्यो चाहिँ त्यो आवेगात्मक रूपमा अथवा चाहिँ त्यो इमोसनल रूपमा कति कुराहरू छन्, त्यस्ता कुराहरू छन् भने त्यो त कुराहरूको त न्याय निरूपणको क्रममा त्यसको कुनै स्थान हुँदैन। उहाँहरूले आफू उपर लागेको अभियोगका सन्दर्भमा के तथ्य र प्रमाण उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभयो र मूलत उहाँमाथि आरोप लगाउनेहरूले कुन तथ्यमा आधारित भएर कुन प्रमाणमा आधारित भएर उहाँ उपेर अभियोग लगाउन पुगे, त्यो अभियोगको आधार के हो, त्यो अभियोग केले पुष्टि गरेको हो, त्यसका लागि के प्रमाणहरू उपलब्ध भए भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यो मिसिलको भित्र रहेर हेर्ने हो। न्यायकर्ताले पनि त्यो मिसिलभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत रूपमा कसैको चाहिँ भनौँ न इमोसनलाई आधार बनाएर अथवा कसैको पूर्वाग्रहलाई आधार बनाएर कसैको राजनीतिक उद्देश्य चाहिँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै अमुक व्यक्तिको अमुक पात्रको चाहिँ राजनीतिक उद्देश्य पुरा हुन्छ उसको चाहिँ अथवा यो बालेश्वरजीको चाहिँ जुन सामाजिक हैसियत चाहिँ ड्यामेज हुन्छ, उनको छवि धुमिल हुन्छ भन्ने आधारमा बने बनाइएका कुराहरू भन्दा पनि न्यायकर्ताले हेर्ने भनेको कुरो चाहिँ अनुसन्धान गरेर यदि यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा हो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो मुद्दाको चाहिँ निरूपण गर्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायकर्ताको रूपमा यी मुद्दामा चाहिँ उहाँ उप लागेको मुद्दाको जुन चाहिँ यो न्यायकर्ताको अधिकार छ, अर्धन्यायिक निकायको हैसियतमा जुन न्याय सम्पादनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
जस्तै कि अब म एउटा प्रश्नमा आउँछु, अदालतमा मुद्दा र मिसिलको सङ्ख्या घटाउनलाई र हाम्रो समाजमा द्वन्द र तपाईँको विवाद झैझगडा घटाउनलाई के भूमिका हुनुपर्छ, हामीले के सोचिदिनुपर्छ? किनभने पर्सा र तपाईँको यो प्रदेश नम्बर दुईकै यदि उदाहरण हेर्ने हो भने पर्सा जिल्लामै तपाईँको जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलास चलिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि मुद्दा कस्तो चिज हो र यसले दिमागी कस्तो प्रभाव पार्छ दिमागमा, यसबारेमा स्पष्ट पारिदिनुहोस्।
अब यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो, समाज छ होइन, समाज छ, त्यहाँ व्यक्तिहरू बस्छन्, व्यक्तिहरू बस्छन् भने उनका आफ्ना सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अथवा पदसँग सम्बन्धित अथवा यो विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ मतमतान्तर हुन्छ, विवाद हुन्छ, मतभेद हुन्छ होइन, त्यो पारिवारिक मतभेद होस् अथवा अरू कारणले हुने सम्पत्तिलाई लिएर हुने मतभेद होस् अथवा आफ्नो जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर हुने मतभेद होस्, अब यी मुद्दाहरूको जन्म हुने कारणहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्। एउटा चाहिँ कृत्रिम कारण हुन्छ, जो वास्तवमा मुद्दा चाहिँ कृत्रिम रूपमा जन्माइएको हुन्छ, एउटा त्यो कसैले नियोजित उद्देश्य राखेर कसैप्रति चाहिँ प्रतिशोध राखेर जन्माइएका मुद्दाहरू हुन्छन् भने कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ वास्तवमा विवादमा रहेकै हुन्छन्। त्यो विवादका पक्षहरूले आपसमा भएको यो विवादलाई न्यायोचित तरिकाले न्यायिक माध्यमबाट समाधान खोज्नका लागि उहाँहरूले त्यो कानुनसम्मत रूपमा जुन खडा भएका अदालतहरू हुन्छन् ती अदालतहरूमा चाहिँ आफ्नो विवादलाई लैजान्छन्। त्यो विवादमा अनि अदालतले चाहिँ आफ्नो निर्णय दिएर उहाँहरूलाई उपचार दिने एउटा बाटो अब हामीले धेरै अगाडिदेखि अवलम्बन गर्यौँ, अहिले अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। एक थरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै अधिकार हनन भइराखेको छ, खुसी राखेको छ भने त्यो व्यक्तिले होइन मेरो यो अधिकार चाहिँ मैले पाउनुपर्छ भनेर उसले आफ्ना अधिकारका प्रति सचेत भएर उपचारमा जाने कुरालाई पनि हामीले फेरि अन्यथा भन्नु हुँदैन, त्यसलाई नकारात्मक लिनु पनि हुँदैन। र अर्को कुरा, हाम्रो प्रदेश नम्बर दुईको सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने अहिले करिब 54 लाख चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर दुईको जनसङ्ख्या छ, त्यही रूपमा तपाईँले पर्सा जिल्ला, बाह्र जिल्ला लगायतका जिल्लाहरूको जनसङ्ख्या हेर्नुभयो भने जनसङ्ख्या बढी भएर पनि त्यो मुद्दा अलिकति बढी परेको जस्तो पनि हामीले महसुस गरेका हौँ। त्यो जनसङ्ख्याको भारको तुलनामा मुद्दाको सङ्ख्याहरू जो देखिन्छ, तपाईँले मनाङ मुस्ताङमा चाहिँ मुद्दा किन कम पर्छ र पर्सा बाह्रमा रौतहटमा किन बढी पर्छ अथवा जनकपुरमा किन बढी पर्छ भनेर तुलना गर्नुको अर्थ चाहिँ हुँदैन, कि जनसङ्ख्याको भारै त्यति फरक छ, एउटा कुरा।
अर्को प्रश्न, जस्तै अब मुद्दालाई कम गर्न अथवा टाइममै छिनोफानो गर्नलाई अदालती बन्दोबस्त अथवा अदालतको व्यवस्थापन यहाँ कतिको प्रभावकारी देख्नु भएको छ र त्यसमा के सुधार भइदियो भने जनसेवाग्राहीलाई फाइदा हुन्छ?
यो प्रश्न न्यायपालिकाभित्र जहिले पनि उठिराखेको छ। न्यायपालिकामा अब रणनीतिक रूपमा विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाहरू अथवा योजनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यसलाई चाहिँ मुद्दा चाहिँ एउटा सीमित समयभित्र चाहिँ एउटा निश्चित समयभित्र चाहिँ फर्चुर गर्ने, प्रत्येक महिनाको लक्ष्य होइन, त्यसपछि त्रैमासिक अथवा वार्षिक, यो लक्ष्यहरू निर्धारण पनि भएका छन् र मुद्दाहरूलाई प्राथमिकीकरण पनि गरिएका छन्। कतिपय मुद्दाहरू निरन्तर सुनवाई हुने प्रकृतिका भित्र पर्छन्, कतिपय बन्दर इजलासभित्र हुने प्रकृतिका पर्छन्।
अर्को अब अन्तिममा अब अन्तिम क्वेसनमा सोध्न चाहन्छु, कुनै यस्तो पनि केस होला जसमा जस्तै पीडित पक्ष नै न्याय नपाएर हारेको अवस्था हुन्छ, तर प्रमाणको आधारमा वकिल साहबले विपक्षीलाई जितवाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा जस्तै वकिल साहब त हिट हुनुभयो, मुद्दा पनि हिट भयो, तर पीडित पक्ष जसले मतलब न्याय पाउनुपर्ने थियो त्यो झन् पीडित भयो, त्यस्तो कन्डिसन आउँछ कि आउँदैन न्यायालयमा?
तपाईँको हेर्नुहोस्, पीडित कस्तो हुन्छ भने पीडित हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ, तर पीडित हो भन्ने कुरा मिसिलले चाहिँ स्थापित गर्न नसक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ, खास गरेर यो सरकारवादी मुद्दाहरूमै यस्तो हुन्छ कि पीडित हो तर अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन सकेको हुँदैन, अनुसन्धानले त्यो कुरालाई स्थापित गर्न सकेको हुँदैन, तर त्यो कारणले गर्दाखेरि बिचरा उसले पीडितले न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको अवस्थाहरू चाहिँ हुन्छ। प्रमाणले पीडित भनेर स्थापित गरिदिन सक्दैन, अनुसन्धानले त्यो जुटाइदिएको हुँदैन, त्यो जुटाइदिनु पऱ्यो, मिसिलले बोल्नु पऱ्यो, भनेपछि अब त्यो जुटाउन नसकेको कमजोरीको फाइदा चाहिँ अर्को पक्षले उठाउँछ, र अनि पीडितलाई के लाग्छ भने म त पीडित भएर पनि मैले चाहिँ न्याय पाउन सकिनँ, यो न्याय व्यवस्थाले मलाई न्याय दिएन भन्ने उसले त्यो पीडा बोकेर बस्छ। तर अब त्यही पाटोमा चाहिँ अनि भूमिका कसको भइदिन्छ त भन्दा, जसले चाहिँ अभियोग लगाउँछ, जसले पीडितको पक्षबाट चाहिँ जस्तो पीडितका पक्षबाट राज्य नै जुन आफै अग्रसर हुने मुद्दाहरू हुन्छन्, राज्यले इनिसिएसन लिने मुद्दाहरूमा राज्यले कस्तो किसिमको अनुसन्धान गर्यो, कति निष्पक्ष भएर गर्यो, कति वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्यो, उसले कस्ता प्रमाणहरू जुटायो, र त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायको आफ्नै जनशक्ति कस्तो छ, उसको साधन स्रोत कस्तो छ, ऊ कति वैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित भएर अनुसन्धान गर्दछ भन्ने ती कुराहरू चाहिँ कतिपय मुद्दाहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबूत प्रमाणहरू नै टाइममा सङ्कलन हुन नसक्दाखेरि त्यसको सान्दर्भिकता नरहने अथवा त्यो सबूत प्रमाणहरू चाहिँ नष्ट हुने र पीडितलाई चाहिँ त्यसले सहयोग नगर्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छन्।
हस्त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
जरूर हमनिके विज्ञजी जे भी बात कहनी है ओकरा के अगर हमनिके ध्यान में रखल जाओ, अपन घर परिवार में लागू कैल जाओ और सिर्फ सुन के ही ना सुन के लागू कैल जाओ, तो अवश्य हमनिके जीवन हमनिके घर गृहस्थी एकदम खुशहाल रही। और यही हमनिके उद्देश्य हटे कि हमनी सबके घर परिवार हमनिके समाज हमनिके देश एकदम खुशहाल रहे, और जे भी हमनिके समस्या से आए वाला भविष्य में जौन भी समस्या से हमनी झूलत रहनी सन ओकरा से के तरह हमनिके निजात पा सकत बनी सन, समय पर के तरह ओकरा के ठीक कर सके आगे बढ़ सकत बानी सन, ये हमनी के कार्यक्रम के उद्देश्य भी हटे
जी। तब हमनी के कार्यक्रम के अंत अंत में आगे बानी सन, वही से प्राविधिक के दीपेंद्र जी बहुत बहुत सहयोग कैनी कार्यक्रम बनावे खातिर, अपने सुन देवनी अगर कोनो प्रतिक्रिया बा तो 0951-20-288 में अपने कह सकत बानी फोन करके, हमनी के पैसा जिंदगी नारायणी FM के पेज बा ऊपर भी जाके अपने कमेंट कर सकत बानी कुछ।
और अगिलका हफ्ता फिर से ऐसन के बढ़िया सा कथा और विज्ञ जी के राय सलाह के साथ कार्यक्रम पैसा आ जिंदगी लेके उपस्थित होकबे करेम सन। आज के खातिर कार्यक्रम प्रस्तुता हम विमला गुप्ता,
हम राधे श्याम पटेल
आज्ञा चाहत बानी सन। प्रणाम,
नमस्कार।